तो आप सबका तेर कदम्ब स्थान पे स्वागत है। कम करो आवाज थोड़ा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तेर कदम्ब ये बहुत ही सुंदर स्थान है, रमणीय स्थान है। यहाँ पर भी ब्रज रज से आपका संपर्क हो रहा है। ब्रज रज महारानी की जय हो। श्री राधे श्याम। कृष्ण बलराम और सखाओं के चरणों के स्पर्श से रज पुनीत हो गई है। और यहाँ पर सुंदर पीलू के वृक्ष हैं जो नम्रता का प्रतीक हैं, बहुत सुंदर इस वन की शोभा बढ़ा रहे हैं। तो ये रूप गोस्वामी का भजन कुटी है। जो कदम का पेड़ है वो उधर है, उधर हम जाएंगे 2 मिनट के बाद। तो ये जो जगह है, जब राधा गोविंद जी का मंदिर बन रहा था वृंदावन में, तब रूप गोस्वामी जी अपने सेवक को उनकी सेवा देकर यहाँ पर आए थे। क्योंकि तो उसके पहले वो राधा गोविंद जी को पेड़ के नीचे रखकर सेवा करते थे, कोई मंदिर नहीं था। योगपीठ से उनको उन्होंने प्रकट कराया, ठाकुर जी ने दर्शन दिया उनको स्वप्न में। ब्रजवासियों की सहायता से गोविंद जी प्रकट हो गए और गोविंद जी की सेवा उन्होंने बहुत समय तक पेड़ के नीचे की। फिर राजा मानसिंह आए, उन्होंने उनके शिष्य हैं राजा मानसिंह, उन्होंने सेवा करने का प्रस्ताव दिया। तो रूप गोस्वामी ने बताया कि हम तो अपने लिए कुछ नहीं चाहते, आप ठाकुर जी के लिए मंदिर बनाओ। तो वो भव्य मंदिर बना 7 मंजिल का। उसके निर्माण के समय रूप गोस्वामी जी यहाँ पर आए। इसलिए ये जगह वैसे बहुत उत्कट जगह है, बहुत अंतरंग जगह है, क्योंकि इसमें रूप गोस्वामी हमारे संप्रदाय के प्रधान आचार्य हैं। हम सबको क्या पुकारते हैं बोल के? रूपानुगा। रूप गोस्वामी के अनुयायी, यही हमारे संप्रदाय का एक परिचय है। हाँ, सुन रहे हैं आप लोग? तो रूप गोस्वामी के अनुयायी के रूप में हमको जाने जाते हैं, और हम हमारा संप्रदाय ही रूप गोस्वामी के नाम से जाना जाता है। और वैसे भी ललिता देवी की प्रधान सखी मंजरी जो है वो रूप मंजरी है। तो रूप मंजरी हमारी प्रधान आचार्य हैं और वो रूप गोस्वामी के रूप में आती हैं। और सनातन गोस्वामी उनके बड़े भाई हैं, उनके गुरु भी हैं, फिर भी हमारा संप्रदाय रूप गोस्वामी के नाम से जाना जाता है। तो रूप मंजरी की सेवा प्रधान है। और उन्होंने यहाँ पर बैठकर, सबसे पहले उन्होंने दोनों भाई तो राम केली में नवाब हुसैन शाह की सेवा में थे, एक प्रधानमंत्री एक अर्थमंत्री, एक डबीर खास एक डबीर सकर मलिक और डबर खास। तो बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा था उनका। लेकिन कुछ समय के बाद में वो विरक्त हो गए, उन्होंने भागवत जी का पठन शुरू किया। और उसके बाद में महाप्रभु जी वहाँ पर आए, और महाप्रभु जी ने सॉरी पहले महाप्रभु जी आए और महाप्रभु जी के चरणों में दांतों में तृण लेकर उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। तो इनका नम्रता देखकर महाप्रभु बोले कि मुझे आपकी नम्रता देखकर हृदय फट रहा है मेरा, फाटे मोरा दिल, ऐसा कुछ बोला है उन्होंने, फाटे मोरा हृदय समथिंग, मतलब माय हार्ट इज ब्रेकिंग टू सी योर ह्यूमिलिटी। इसलिए ऐसा कहा गया है कि सनातन गोस्वामी की नम्रता का कोई नकल नहीं कर सकता है, रघुनाथ दास गोस्वामी का विरक्ति का कोई नकल नहीं कर सकता है। इस तरह से कोई प्रमुख भक्त है चैतन्य महाप्रभु के, उसमें से रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी है। तो सनातन गोस्वामी को रूप चैतन्य महाप्रभु ने वाराणसी में 2 महीने शिक्षा दिया। उसको कहते हैं संबंध ज्ञान, नॉलेज ऑफ कनेक्शन विद द लॉर्ड, संबंध ज्ञान। वो सनातन गोस्वामी ने कई ग्रंथों में उसको वर्णन किया, बृहद भागवतामृता, लघु भागवतामृता, हरि भक्ति विलास, और कई ग्रंथों में उसको उन्होंने वर्णन किया। रूप गोस्वामी को उन्होंने ज्ञान दिया अभिधेय ज्ञान, हाउ टू एंगेज इन सर्विस टू कृष्णा। वो 9 दिन 10 अश्वमेध घाट इलाहाबाद त्रिवेणी संगम पे दिया, और उसको रूप गोस्वामी ने भी ग्रंथों में प्रकट किया। विशेष बात यह है कि वो जो अभिधेय ज्ञान है, कैसे भगवान को अपने संपर्क में जोड़ना है और उनके बाद में उनकी सेवा में लगाना, ये जो ज्ञान है, ये जो ग्रंथों में उन्होंने उतारा, वो यहाँ बैठ के ही उतारा है, यहाँ बैठ कर ही लिखा है। उज्ज्वल नीलमणि, ललित माधव, विदग्ध माधव, उपदेशामृत, भक्तिरसामृत सिंधु और बहुत सारी नाटिकाएं, बहुत सारे ग्रंथ उन्होंने यहाँ पर लिखे। और आप समझ सकते हैं कि महाप्रभु की जी शिक्षा के ऊपर कितना चिंतन किया होगा उन्होंने, कितना मनन किया होगा एकांत में बैठकर, और कितना जन कल्याण के विचार में चिंतन किया होगा। एक जगह से नॉलेज मिला हुआ है, एक जगह पर जनता है, वो नॉलेज जनता तक पहुंचाना है तो उनकी भाषा में उनको समझे उस तरह से लिखना है बहुत विचारपूर्वक। कितनी मेहनत की होगी, उसमें कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, वो कुछ लोगों ने स्टडी किया, उन्होंने बहुत भक्तों ने इसको आके कैसे उन्होंने ये किताब लिखी होगी। किताब नहीं लिखे, ये पेड़ के पत्ता है ना कोई विशेष, उस पर लिखते थे उसको, फिर हर पेड़ को लिखने के बाद में वो उसको एक प्रक्रिया करते थे उसको मेंटेन करने के लिए, ताकि वो लिखा हुआ नष्ट न हो जाए। फिर एक पत्ता प्रिजर्व किया, फिर दूसरा पत्ता उसके ऊपर रख दिया। किताब का मतलब क्या, ऐसे एक पेड़ के पत्तों का एक ऐसा एक स्टैक बंडल, इस तरह से किताब लिखते थे। और रूप गोस्वामी का अक्षर मोती मणि की तरह सुंदर था। हमारे पास एक बार व्हाट्सएप पर उनका हस्तलिखित आया था, बहुत सुंदर अक्षर संस्कृत, यहाँ पर भी है। हाँ, तो वो इतना सुंदर अक्षर में काव्य रूप किताब लिखते थे। तो ये सब किताबें उन्होंने यहाँ लिखी है। इसका मतलब क्या हुआ कि गौड़ीय संप्रदाय के जो प्रमुख ग्रंथ हैं, जिसको गौड़ीय संप्रदाय के आधार स्तंभ है, वो जिस पर गौड़ीय संप्रदाय का सिद्धांत आधारित है, वो सबका लेखन यहाँ पर किया गया है रूप गोस्वामी महाराज ने। और बड़े एकांत में, इतनी शांत जगह है यहाँ पर, इतना चिंतन करने के लिए बहुत एकांत शांत पवित्र स्थान है रूप गोस्वामी ने चुना, क्योंकि यहाँ पर ठाकुर जी आकर अपने गायों को इकट्ठा करते हैं, गौचारण करते हैं, भोजन करते हैं, बड़ी मधुर मधुर प्रेम की लीला करते हैं, और यहीं से सब गायों को इकट्ठा करके घर लेके जाते हैं। ऐसे रमणीय लीला स्थली को उन्होंने चुना, जो सघन वृक्षावली, बहुत सुंदर सघन वृक्ष यहाँ पर है, कुंड का आसरा है, कदम के पेड़ कल्प वृक्ष का सहारा है, सुंदर जगह बैठकर रूप गोस्वामी ने ये ग्रंथ लिखा। इतने सारे ग्रंथ लिखे क्योंकि गौड़ीय सिद्धांत जो है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। गौड़ीय सिद्धांत में बाकी चारों संप्रदाय का सार जो है वो गौरांग महाप्रभु ने स्वीकार किया है, और नम्रता ये गौड़ियों का सबसे विशेष लक्ष्य है, नम्रता। हमारा सबसे परम श्लोक क्या है संप्रदाय का, अगर एक श्लोक में बताया जाए कि हमारा संप्रदाय क्या है, नादपि सुनिचे न तरोरिवा सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदाहरी, ये हमारे संप्रदाय का सार है। अगर किसी का गौड़ीय वैष्णव बनना है तो उनको इस श्लोक पर चिंतन करना होगा और कोशिश करनी होगी वैसे जीने की। और ये बहुत क्रांतिकारी संप्रदाय है, इट्स अ वेरी रेवोल्यूशनरी संप्रदाय। क्यों? क्योंकि एंड में क्या बोलते हैं, आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टु माम, मिलना कुछ नहीं है आपको, आपको केवल कुचला जाना है, बस कुचल जाएंगे, टुकरा जाएंगे, हाँ ये सब आपको तैयारी रखनी पड़ेगी। ऐसा अनोखा संप्रदाय है, ऐसे हमारे आदर्श हैं, कौन है, गोपियाँ, जो हमारे लक्ष्य हैं। और इसमें कोई भी ऐसा बोलते नहीं कि हमको कृष्ण की सेवा चाहिए, सब लोग बोलते हैं हमको सेवकों की सेवा करनी है, दास दास अनुदास, गोपी भरतुर पदकमलयोर दास दास अनुदास, ये गौड़ियों की विशेष लक्ष्य है उनका। कभी भी ज़्यादा प्रत्यक्ष जाकर माला बनाकर कृष्ण को पहनाने की तमन्ना रखते नहीं है, वो माला बनाकर सखी के हाथ में देंगी, सखी अपने सखी के हाथ में देंगी, वो अपने सखी के हाथ में देंगी, वो ललिता को देंगी, फिर वो राधारानी को देंगी, फिर वो कृष्ण को पहनाएंगी। कोई भी ये नहीं कहे मैंने फूल बिने हैं, मैंने माला बनाई है, मैं भी जाकर हर बार उनको क्यों, मैं बनाना चाहता हूँ, ऐसे नहीं। कोई ये भावी संप्रदाय में इसको कोई स्थान ही नहीं है। इसमें जो सबसे न्यून है, दास 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 अनुदास है, उस पर सबसे अधिक कृपा होती है। जो सबसे नीचे अपने आप को लेकर जाता है, वो सबसे भगवान की नजरों में ऊपर रहता है। ये सिद्धांत बहुत जरूरी है, और समझना भी जरूरी है, और पालन भी करना जरूरी है, लेकिन पहले लिखा उन्होंने यहाँ पर बैठकर, ताकि रूप गोस्वामी ने, ताकि जनता को ये गौड़ीय संप्रदाय का सिद्धांत जो है वो ठीक से समझ में आए। ये चार नियम पालन करना, जप करना तो शुरुआत है इसकी, एंड नहीं है। दीक्षा लेना इनिशिएशन, बिगिनिंग, तो शुरुआत करने का समय है वो। लेकिन नम्रता को पार कर, नम्रता को प्राप्त करना, सहनशीलता को प्राप्त करना, दूसरों का सम्मान करना, खुद के लिए सम्मान की अपेक्षा नहीं करना, इस तरह से इस भाव में निरंतर भगवान के नाम का जप करना, वो भी निरपेक्ष भावना से कि मैं जप करूंगा तो मेरा परमिशन प्रमोशन हो जाएगा, फिर मुझे मैं गुरु बनूंगा, फिर मेरे शिष्य बनेंगे, फिर मेरे संप्रदाय बनेगा फिर मैं मंदिर बनाऊंगा, फिर मैं प्रॉपर्टी बनाऊंगा, फिर मैं भगवान का मंदिर में बहुत बड़ी सेवा करूंगा, कोई वो लक्ष्य नहीं उसके अंदर। सेवा की ऐसी परिभाषा है कि सेवा का कोई लक्ष्य नहीं होता, केवल जिसकी सेवा कर रहे हैं सेव्य, उसको प्रसन्न करना, यही लक्ष्य होता है। खुद को उसमें कुछ मिले ना मिले, खुद का नुकसान हो ना हो, प्राप्ति हो ना हो, उसमें कोई उसका विचार ही नहीं है। तो ऐसे महान संप्रदाय में स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने भक्त के रूप में जन्म लिया और उनके ये प्रमुख अनुयायी हैं रूप गोस्वामी। तो यहाँ पर बैठकर उन्होंने बहुत अनोखा अनुभव भी किया है। उनके बड़े भाई सनातन जी महाराज का एक दिन जन्मदिन था तो दोनों बड़े विरक्त थे। जब महाप्रभु का दर्शन हुआ रामकेली में तो और विरक्ति बढ़ी, काम काज छोड़ दिया, भागवत पढ़ना शुरू किया, उनको अरेस्ट किया गया उसके लिए। फिर वहाँ से भाग गए वो जंगल में से और पुरी पहुँचे और महाप्रभु दर्शन का संग किया, उन्होंने महाप्रभु जी का लाभ लिया सत्संग का, सेवा का। उसके बाद महाप्रभु जी ने उनको आदेश दिया कि आप ब्रज में चले जाओ, और कई आदेश दिए, एक आदेश दिया कि ब्रज में चले जाके जो भी लुप्त स्थान है उनको प्रकट करो, दूसरा आदेश दिया लुप्त स्थान प्रकट करने के बाद वहां पर विग्रहों की स्थापना करो, उसकी पूजा अर्चा भी स्थापना करो। और उसके बाद मैंने बताया कि जो मैंने आपको बताया उसको ग्रंथों के रूप में प्रकाशित करो, यह आदेश दिए उनको। तो फिर ब्रज में आए और त्यक्त्वा तूर्णमशेषमण्डलपति श्रेणीं सदा तुच्छवाद। मंडलपति थे वो, उनके पास जहाज भर के सोने की मोरे थी, इतना धन था, इसको गोद में रखो। तो उतना सारा पोजीशन, अधिकार, पद, ऐश्वर्य, त्यक्त्वा तूर्णमशेष, तूर्ण की तरह, मतलब तूर्ण का पत्ता होता है ना, छोड़ दिया उसको, किसके लिए? भिखारी बनने के लिए। धनी आदमी है जैसे उद्धव जी, सबसे बड़े अधिकारी थे वो, तूर्ण का पत्ता बनने के लिए यहाँ पर आए। जैसे राजा के अर्थमंत्री प्रधानमंत्री थे वो, सब कुछ छोड़ दिया, क्यों? ब्रज में भिक्षा मांगने के लिए, पेड़ के नीचे निवास करने के लिए, कौपिन पहन के घूमने के लिए। कोई भी इतनी दौलत कब त्यागता है? जब उतनी दौलत के आगे की दौलत जब प्राप्त होती है ना, तभी वो दौलत छोड़ देता है। बालक कैसा होता है, वो खिलौना पकड़ता है, छोड़ता कभी है? जब उससे भारी खिलौना उसको मिलेगा ना, तो वो खिलौना छोड़ देता है, वो एकदम आराम छोड़ देता है। आपके बालक भी करते होंगे ना, बढ़िया खिलौना आया तो पुराना खिलौना छोड़ देते हैं। वैसे ही इतनी बड़ी धन दौलत अगर कोई त्याग कर रहा है, इसका मतलब तो बुद्धू तो नहीं है वो। अगर उससे बड़ी दौलत उसको मिल रही है तो ही वो इतनी बड़ी ऐश्वर्य संपन्नता जो है वो छोड़ सकता है। तो लॉजिकली, तार्किक दृष्टि से सोचा जाए, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी बुद्धि से गरीब नहीं थे। उन्होंने इतना बड़ा पोजीशन, इतना बड़ा पद, अधिकार, पद, इन्फ्लुएंस, प्रभाव सब छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि उनको उससे भी बड़े ऐश्वर्य की प्राप्ति हो रही थी, होने वाली थी, हो गई। वो वन में कोपिन पैर कर भटकना, एक पेड़ के नीचे 3 दिन के ऊपर नहीं रहना, भिक्षा मांग कर खाना, इसमें दौलत कौन सी है? इसमें कृष्ण प्रेम की दौलत है, कृष्ण प्रेम का धन है इसके अंदर। उसको अनुभव करते हुए, आनंद के सागर में डूबते हुए वो ब्रज में डोले और ब्रज का उद्धार किया। हम लोग सब लोग 6 गोस्वामी से बहुत ऋणी हैं, बहुत कृतज्ञ हैं उनके, क्योंकि 6 गोस्वामी नहीं होते तो ब्रज नहीं होता, ब्रज सब लुप्त हो चुका था। जब लोकनाथ जी महाराज और भूगर्भ गोस्वामी यहाँ पर आए तो पूरा जंगल ही जंगल सब लुप्त स्थान हो गए थे, वैसे वनों में भटकते थे भगवान को पुकारते पुकारते। तो रूप सनातन गोस्वामी ने, बाकी सारे गोस्वामी ने धीरे धीरे ब्रज को प्रकट किया। इस शास्त्र में लिखा गया है कि बिना 6 रूप सनातन रूप सनातन पदे होई बे आकूति तबे हम अभु जाबो से युगल प्रीति रूप रघुनाथ पदे होइबे मोर आशा। प्रार्थना करो ए सदा नरोत्तम दास। तो रूप गोस्वामी जैसे जो गोस्वामी है, छह गोस्वामी, उनके चरणों में आकुति जब मैं प्रार्थना करूंगा, शरणागति ग्रहण कर लूंगा, तभी जाकर मैं राधा कृष्ण की प्रीति का रहस्य समझ सकूंगा। तभी हमा पूजा बोसे युगल प्रीति, युगल प्रीति मतलब राधा और कृष्ण के बीच में जो प्रेम संबंध है, भक्ति है, प्रेम है, उसको समझना है तो इन गोस्वामियों की कृपा के बिना वो नहीं समझ सकते। हम बहुत सारा प्रवचन दे सकते हैं, बहुत सारा श्लोक रट सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बिना गोस्वामियों के कृपा से हम ये रहस्य नहीं समझ सकते। इसलिए हम सब लोग रूप गोस्वामी को प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, उनके ग्रंथों को पढ़ते हैं। नेक्टर ऑफ डिवोशन, भक्ति रसामृत सिंधु, क्या ग्रंथ है। जैसे श्रीमद् भागवत महेश जी, श्रीमद् भागवत कृष्ण है स्वयं, कृष्णो सुधामो उपगते। जब वो कृष्ण सुधाम चले गए तो भौतिक दुनिया के क्षितिज पर भागवत जी प्रकट हो गए। तो श्री कृष्ण और भागवत जी में कोई अंतर नहीं। भागवत को पढ़ना यानी श्री कृष्ण का संग करने जैसा है। तो उसके सामने भक्ति रसामृत सिंधु ये ग्रंथ जो है वो राधा रानी स्वयं है। राधा रानी की भक्ति का रहस्य क्या है, टेक्निकली, लॉजिकली, इन एवरी पॉइंट ऑफ व्यू, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड, तो वो रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में प्रकट किया है। भक्ति के अलग अलग अंग, तात्विक दृष्टि से भक्ति का समझदारी, ज्ञान, कैसे भक्ति की जाती है, उसके कितने प्रिंसिपल है, क्या क्या पालन करना होता है, कैसे करना होता है, कब करना होता है, किसके द्वारा करना होता है, कौन योग्य है, कौन अयोग्य है, कौन सा समय, किस समय, किस तरह से, हर प्रकार का टेक्निकल इन्फॉर्मेशन दिया उसके अंदर। इसलिए भक्ति का पूरा विवरण दिया उसके अंदर, विश्लेषण के साथ हर रस का अनुभव दिया उसके अंदर, हर रस का वर्णन दिया है, साख्य रस का, शांत रस का, दास्य का, वात्सल्य का, माधुर्य का, पूरा डिटेल में उदाहरण के साथ सारे शास्त्रों का, श्लोकों का उद्धरण करते हुए हर रस का वर्णन दिया है। कोई कपोल कल्पित बातें नहीं बताई, हर एक कहानी को शास्त्रीय आधार दिया, हर एक कहानी के लिए एक श्लोक दिया, उसके पर एक्सप्लेन किया हर चीज को। भक्ति की व्याख्या के लेकर चरम सीमा जो है, राधा रानी का जो भाव है, वो सब कुछ उसमें प्रकट किया हुआ है एक ग्रंथ के अंदर, नेक्टर ऑफ डिवोशन। वो रूप गोस्वामी की सम्मुख सबसे प्रमुख कंट्रीब्यूशन है, इसलिए हम उनका ऋणी है बहुत। और जिसको अगर भक्ति के तत्व को समझना है फॉलो करने के लिए, प्लीज रीड भक्ति रसामृत सिंधु, मराठी में भी आ गई है। हाँ, जोड़ी बालेश्वर, आपके यहाँ पर मराठी में भक्ति रसामृत सिंधु सरल भाषा में भी प्रकाशित की गई है। रवि, इनको आपको देना चाहिए, सब लोग को, भक्ति विद्वान में अवेलेबल है मराठी में। तो उसमें सरल भाषा में बताया गया है कि भक्ति कैसे की जाती है और क्यों करते हैं, व्याख्या की गई है। अन्य अभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम, भक्तिरुत्तमा। सुंदर सी व्याख्या की गई है, सबसे आसानी से भक्ति के तत्वों को सुलझाया उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से। तो रूप गोस्वामी जब यहाँ पर निवास कर रहे थे तो एक दिन उनका भाई का बर्थडे था, तो बड़े विरक्त थे वो, कोई साधन नहीं था उनके पास, फिर भी मन में विचार आया कि मेरे भाई का जन्मदिन में कुछ ना कुछ होना चाहिए, खीर बननी चाहिए। फिर बाद में लगा अभी खीर मतलब चावल लाओ, दूध लाओ, मिठाई लाओ, सब कुछ साधन जोड़ना पड़ेगा ना, नहीं नहीं तो बहुत काम है मुझे, ग्रंथ लेखन करना है, मैं ये सब चक्र में नहीं पढ़ूंगा, मन में इच्छा जरूर थी। उतने में एक सुंदर कन्या यहाँ पर आई टोकरी को लेकर सर पे, उसमें चावल, दूध, मीठा, मेवा, घी, सुंदर सुंदर जो घी, सुंदर जो खीर के लिए बनाने के लिए ज़रूरत है वो सब साधन लेकर आई वो, बहुत सुंदर। और महाराज जी को बताया, महाराज जी मेरे मैया ने भेजा है आपको खीर बनानी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उन्होंने कहा कि मैं व्यस्त हूँ, आप बना लो। तो उसने सारे सामान उतारा और बहुत सुंदर खीर बनाई। बोले भोग लगाओ, अभी भोग भी लगाया, अब मैं जा रही हूँ, चली गई। उतने में सनातन जी महाराज आए, तो उन्होंने उनको उस खीर को अर्पण किया। और जब खीर खाने लगे सनातन गोस्वामी महाराज, तो उनको आंखों से आंसू आने लगे, अपने आप स्वतः ही कंठ गदगद हो गए, वो ऐसे कांपने लगे, खीर खा रहे हैं और कांप रहे, रो रहे हैं, खा रहे हैं, कांप रहे हैं। मैंने कहा, अरे रूप, तुमने यहाँ इतने जंगल में खीर इतनी सुंदर दिव्य स्वाद वाली कैसे पैदा की? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, वो लड़की आई थी यहाँ पर, उसने सामान लाई थी, उन्होंने कहा महाराज जी आपके लिए लाई हूँ। मैंने कहा बना लो, उसने बना दिया अपने हाथ से और चली गई। वो बोले, बताओ उसका वर्णन करो, उस वो लड़की कैसी थी? तो जो भी देखा उन्होंने वर्णन किया कि ऐसे ऐसे वस्त्र पहने थी, ऐसे ऐसे, अरे पगले, वो तो राधा रानी स्वयं थी, तुम यहाँ भजन करने बैठे हो उनकी सेवा करने के लिए, उनकी सेवा तुमने ली आज, कैसे भक्त हो तुम? डांट रहे हैं उनको लेकिन खाते जा रहे हैं। हैं, रूप गोस्वामी ने भी खाया उसको, उसके भी आंखों में आंसू आ रहे हैं। ये उनको बोल रहे, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे उनके हाथ से सेवा नहीं स्वीकारनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, आपने तो उनकी सेवा लिया, ऐसा करते हैं, खुद खाए जा रहे हैं और रोए जा रहे हैं। वो स्वाद इतना दिव्य था, भाव इतना उमड़ आया उससे, तो राधा रानी ने स्वयं यहां पर आकर रूप गोस्वामी की सेवा की। राधा रानी बड़ी दयालु हैं, जो शुद्ध हृदय भक्त होते हैं उनकी सेवा करने के लिए तड़पती रहती है। रघुनाथ दास जी महाराज राधा कुंड के किनारे धूप में जल रहे थे, मई महीने में नाम जप कर रहे थे, कोई भान नहीं शरीर का उनको कुछ, तो राधा रानी स्वयं आई है और अपना चुनरी ओढ़कर खुद पसीने में तर हो गई है धूप में, और सनातन रघुनाथ जी महाराज को साया दिया उन्होंने, उनको पता ही नहीं। उसके पहले सनातन जी फिर राधा कुंड किनारे बैठ के भजन कर रहे हैं, तो पानी पीने के लिए शेर आता है वहां से, तो कृष्ण आते हैं, डंडे से शेर को भगा देते हैं, और रघुनाथ जी भजन में मग्न हैं। तब भी सनातन जी वहां पर आते हैं, बोलते रहे, रघुनाथ तुम कैसे भक्त हो, जब किस लिए कर रहे हो, उनको रिझाने के लिए और उनको सेवा में लगा रहे हो, अपनी कुटी बना लो, ऐसे असुरक्षित जगह पर मत बैठो। फिर भी वो जगह पर बैठे रहे, इतने विरक्त थे। ठाकुर जी ने स्वयं बताया कि रघुनाथ जी की विरक्ति का कोई नकल नहीं कर सकता है। 2 दिन में छाछ लेते हैं हाथ की मुट्ठी भर, और वो लेते लेते भी अपने आप को गाली देते हैं कि मैं कितना भोगी हूं, कोई नहीं कर सकता है उनका नकल। फिर अगली बार उन्होंने जब भजन किया तो राधा रानी स्वयं आकर पल्लू पकड़ रही है, और सनातन जी देख रहे हैं, बहुत डांटते हैं उनको, उनको पता नहीं है तुम क्या कर रहे हो, राधा रानी की सेवा कर रहे हो कि उनकी सेवा ले रहे हो, आज वो स्वयं पधारी थी यहां पर आपको छाया देने के लिए। तब जाकर रघुनाथ जी ने वहां पर कुटिया बनाई जिसका आपने दर्शन किया। इतने विरक्त बाबा थे वो भजनी, रोज 2000 दंडवत लगाया करते थे वो, रोज 2000 दंडवत लगाया करते थे वैष्णवों के लिए, और कई लाख नाम जप करते थे। उन्होंने वहां बैठकर फिर गौरांग महाप्रभु की उत्तरांग उत्तर लीला का वर्णन किया है। तो ऐसा है, रमणीक स्थान है, रूप गोस्वामी को हमारा बारंबार प्रणाम प्रणाम है। जय जय, नहीं, राधे जय जय माधव द्वैते, गोकुल तरुणी मंडल मोहिते, राधे जय जय माधव द्वैते, वृषभनुदाधि नवशशिलेखे, ललितभमिसुखलमितविशाखे, दाधि नवशशिलेखे, ललित सखी गुण रमित विशाखे, राधे जय जय माधव द्वैते, दामोदर राती वर्धन वेशे, हरि निष्कुट वृंदा विपिनेशे, दामोदर राती वर्धन वेशे, हरि निष्कुट वृंदा विपिनेशे, राधे जय जय माधव द्वैते, राधे। गोकुल तरुणी मंडल मोहिते, हरि हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भजन रूप गोस्वामी ने लिखा है राधा रानी के गौरव में। वो कहते हैं वृषभानु महाराज के प्रेम सागर में ये कमल खिला हुआ है। वृषभानु दधि उनके सागर में नवशशि एक नए चंद्रमा की तरह ये फूल खिला हुआ है राधा रानी के रूप का। और ललिता देवी सब उनका श्रृंगार करती है, सेवा करती हैं हरि के आनंद के लिए। हा? फिर दामोदर रति वर्धन वेशे, दामोदर कृष्ण भगवान के रति को वर्धन करने के लिए ये सुंदर श्रृंगार धारण करती हैं उनके आनंद को बढ़ाने के लिए। और वृंदावन वृंदाविपी नेशे यानी वृंदावन जैसे अनेक अनेक वनों में लीला करते हैं। इस तरह से राधा रानी की याचना करते हुए प्रार्थना करते हुए सुंदर भजन लिखा है। और इस जगह पर जो वृक्ष है वहाँ पर गौचारण करने के बाद रात को जब समय संध्या के समय लौट के आते हैं तो इस वृक्ष पर चढ़ते हैं और बांसुरी बजाते हैं, छठा सुर बजाते हैं। छठे सुर बजने के बाद सारी गायें जो हैं अपना अपना नाम सुनती हैं, उसमें एक धुन बजाते हैं, सभी गायों को लाखों करोड़ों करोड़ों गायों को अपना अपना नाम सुनाई पड़ता है। और भाग के पूंछ ऊपर उठा के, कान ऊपर उठा के, आँखों गले को ऊपर उठा के देखते हुए भाग के इस पेड़ के ऊपर आते, पेड़ के पास आती है और ऊपर से देखती है, एवरीबडी लुकिंग अप कहाँ से मुरली बज रही है। फिर सबको इकट्ठा करते हैं, कुछ गायें फिर भी नहीं आती हैं, फिर ये सबको इकट्ठा करके वहाँ रख के खुद जाते हैं और कुछ गायों को अपने हाथ से पकड़ के लेके आते हैं। वो जानबूझकर सुनने पर भी ना सुनी करती हैं, ऐसे गायों को खुद जाकर लेके आते हैं प्रेम से, फिर सबको लेके आते हैं और यहाँ से फिर भवन जाते हैं। शाम को सब गायों को अपनी गौशाला में रखे ठाकुर जी अपने घर चले जाते हैं। बहुत सुंदर लीला है यहाँ पर, यहाँ बैठ के भोजन करते हैं, लुका छुपी खेलते हैं, खेल बहुत सारा सुंदर सुंदर गायों के साथ में सखाओं के साथ में लीला करते हैं। ये गौचारण में से बहुत प्रधान स्थली है, गौचारण सख्य लीला के प्रद में प्रधान स्थली है। जैसे ग्वाल पुकरा है गोवर्धन में, वो भी एक सख्य लीला का प्रधान स्थान है। यहाँ पर भी सख्य लीला का प्रधान स्थान है, अपने सखाओं के साथ जो प्रेम का आदान प्रदान करते हैं उसका ये प्रधान स्थान है। सो गौचारण स्थली की, टेर कदम्बक धाम की, रूप गोस्वामी महाराज की, रूप गोस्वामी भजन स्थली की, ब्रज रज की जय हो। श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम।